दूसरी हदीस पे चलते हैं, बुक को देखिए। थोड़ा सा हिस्सा आपको यूज टू करवाने के लिए मैं पढ़ती हूँ इसका भी। अन आयशत रदियल्लाहु अन्हा, अनहा क्यों कहा, ऊपर तो अनहू था, अनहू होता है मर्द के लिए और यहाँ है अन आयशत रदियल्लाहु अन्हा, औरत के लिए जब आता है तो अनहा। हु और हा का फर्क है, हु मुजक्कर की जमीर है और हा जो है ये मुअन्नस की जमीर है। अन्नल हारिसा इब्ने हिशाम रदियल्लाहु अन्हो सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल या रसूलुल्लाह كيف ياتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت أنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا. चलिए अब इसका लफ्जी तर्जमा देखिएगा साथ साथ, बस तवज्जो रखें, लिखने की जरूरत नहीं, जो लफ्ज मुश्किल लगे उसको नोट कर सकते हैं आप। अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा, आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, अन्नल हारिस बिन हिशाम रदियल्लाहु अन्हु, ये क्या हारिस बिन हिशाम राजी हुआ अल्लाह उन पर, साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवाल किया उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फकाला बस पूछा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, यहाँ नोट कीजिए, जब नबी सल्लम सहाबा के सामने होते थे तो आप उनको या रसूलुल्लाह कहते थे, क्योंकि या खिताब का सीगा है। आज अल्लाह के नबी सल्लम हमारे सामने नहीं है, जैसे कि आप सामने हैं तो मैं कह सकती हूँ कि या आयशा, लेकिन अगर या मुझे कोई ना दिखे और मैं उसको या कहूँगी तो आप कहेंगे वो तो इधर है ही नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह के नबी के दौर में या रसूलुल्लाह कहना जायज़ था उस वक़्त जबकि आप सामने होते थे, लेकिन आज चूँकि नहीं है तो इस तरह से फिर कहना दुरुस्त नहीं है। तो इनका सवाल क्या था कि अल्लाह के रसूल कैफ याती कल वहयु, कैसे आती है आपके पास वही। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अहयानन कभी कभी, यानी सम टाइम, यातीनी आती है मेरे पास, मिसला मानित सलसलतिल जरसी, घंटी की आवाज़ की तरह, वह और वो अशद्दु अलैया, मुझ पर बहुत शदीद होती है, फयफसिमु अन्नी वक़द वाईतु अन्हु, फिर जब वो कैफियत मुझसे गुजर जाती है तो मुझे वो याद हो चुका होता है, माँ काला जो उसने कहा, यानी जब फरिश्ता जाता है तो मुझे उस वक़्त वो बात याद हो चुकी होती है। वाहयानन और कभी कभी क्या होता है, या तमस्सलु लियल मलकु, मिसाल बनता है मेरे लिए फरिश्ता, यानी रूप ढालता है फरिश्ता, रजुलन आदमी का, यानी आदमी की सूरत में आता है, फयुकल्लिमुनी फिर वो मुझसे कलाम करता है, फाई मा यकुलू फिर मैं याद कर लेता हूँ जो वो कहता है। ये जो लफ्ज़ है ना वाई तू और फाई, ये दोनों का लफ्ज़ क्या, विया, विया कहते हैं बर्तन को, तो बर्तन में कोई चीज़ कंटेन की जाती है ना, तो किसी चीज़ को याद करने को यहाँ वाई तू और यही फाई का लफ्ज़ आया है कि मैं उसको याद कर लेता हूँ जो कहा। अच्छा अब यहाँ पर हदीस पूरी हो गई है, ये आप लिखेंगे क्योंकि आगे लफ्ज़ कालत आयशा, तो ये हज़रत आयशा का तबसरा है इस हदीस पर, قالت عائشة رضی اللہ عنہا، کہا عائشہ رضی اللہ عنہا نے، ولقد رائیتہ، بے شک ہم نے دیکھا اس کو، ہو سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ واقعی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو کہا وہ ٹھیک کہا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، ینزل علیہ الوحی، نازل ہوتی تھی ان پر وحی، فی الیوم الشدید البردی، سخت سردی کے دن میں بھی، یعنی اتنی سردی ہوتی تھی جب اللہ کے نبی پر وحی آتی تھی، لیکن فَيَفْصِمُ عَنْهُ، اور اس وقت کیا ہوتا تھا کہ پھوٹ پڑتا تھا ان پہ، یعنی اللہ کے نبی پر جب یہ وحی جب آتی تھی تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی، وَإِنَّ جَبِينَهُ، بے شک آپ کی پیشانی، لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، پسینے سے عرق آلود، یعنی آپ کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی، مطلب یہ ہے کہ وحی کی کیفیت آپ پر جو ہوتی تھی وہ بڑی شدید ہوتی تھی۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اس ایک حدیث میں بہت کچھ ہے۔ آپ کے پاس وحی کس حالت میں آتی ہے، یہ سوال تھا صحابی کا، ٹھیک ہے، اس سوال میں تین چیزیں آتی ہیں، نمبر ایک کہ وحی کی کیفیت کیا تھی، ہاؤ اٹ واز، دوسری یہ ہے کہ جو وحی لے کر آتے تھے جبرائیل حامل وحی، وہ کیسے تھے، ان کی کیفیت، اور تیسری اللہ کے نبی کی کیفیت ہے۔ اور اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب پڑھیں تو آپ کو تینوں کی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کو یہ آتی تھی۔ اب یہ چھوٹی سی حدیث ہے، ہم تھوڑا سا اس پہ مزید غور و فکر کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ان عائشہ رضی اللہ، حضرت عائشہ، یہ ہے راویہ، لکھ لیجئے کہ جو حدیث کو روایت کرے اس کو راوی کہتے ہیں، مرد ہوگا تو راوی اور عورت ہوگی تو راویہ، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے۔ کون تھی، تھوڑی سی باتیں ان کے بارے میں نوٹ کیجئے گا، ویسے تو ہم ان کی پرسنالٹی سے واقف ہیں لیکن کچھ چیزیں ہمیں نہیں بھی پتہ ہوں گی۔ تو پہلی بات ہے کہ عائشہ کا پورا نام کیا تھا، عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، باپ کا نام کیا تھا، عبداللہ بن ابی قحافہ، لیکن کنیت تھی ابو بکر۔ کتنے لوگوں کو ابو بکر کا اصل نام بتا تھا، ابو بکر ان کا نام نہیں ہے، ابو میں نے باپ، بکر میں نے بکر کا، یعنی حضرت ابو بکر جو تھے یہ کنیت تھی، نام ان کا عبداللہ تھا، ابھی قحافہ ان کے بیٹے، یعنی قحافہ کے بیٹے تھے۔ اور حضرت عائشہ کا یہاں اصل نام کیوں آیا، حالانکہ عربوں میں رواج کیا تھا کہ عورت کو جب عزت دینی ہوتی تھی تو اس کے نام نہیں لیتے تھے، معیوب سمجھتے تھے کسی عورت کا نام لینا۔ حضرت عائشہ نے ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکوہ کیا کہ اللہ کے نبی میری تو اولاد نہیں ہے تو میں تو پھر کبھی کنیت نہیں رکھ سکتی، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھانجے عبداللہ، کون تھے عبداللہ، عبداللہ بن زبیر، جو حضرت زبیر کے بیٹے اور حضرت اسما کے بیٹے تھے جو کہ حضرت عائشہ کی بہن تھی، تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں تم اپنے بھانجے کی کنیت رکھ لو، تو لہٰذا حضرت عائشہ کی کنیت ام عبداللہ رضی اللہ عنہ تھی، ٹھیک ہے، اور یہ خود کو یہی کہلانا پسند کرتی تھی۔ ان کی ماں کون تھی، ان کی ماں کا نام تھا زینب، تاریخ میں معروف ہیں وہ ام رومان کے نام سے، بنت عمید بن عامر بن حارث، اول دور میں اسلام لانے والوں میں شامل تھی۔ ام رومان کی شادی جو کہ حضرت عائشہ کی ماں ہیں حضرت ابو بکر سے پہلے عبداللہ بن حارث الاسدی سے ہو چکی تھی، ان کے انتقال کے بعد پھر ابو بکر سے نکاح ہوا۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ عربوں میں دوسری شادی، ایک کے بچے پھر دوسرے کے پاس چلے جائیں، کوئی معیوب کلچر نہیں تھا، آج تو ہمارے ہاں اس چیز کو بھی ناپسند کیا جاتا ہے۔ تو جو پہلے شوہر تھے ان سے ان کے دو بچے تھے، ایک یعنی حضرت عائشہ اور ایک عبد الرحمن، ٹھیک ہے۔ ان کے بھائی کتنے تھے، حضرت ابو بکر کے کتنے بیٹے تھے، تین تھے، عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد، ٹھیک ہے۔ ان کی بہنیں دو تھیں، اسما اور ام کلثوم تھی، اب نہ لکھ سکیں لیکن یہ دیکھیے کہ ان کے نسب موجود ہیں۔ حضرت عائشہ کب پیدا ہوئیں، سن 4 یا 5 نبوی میں پیدا ہوئیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسلامی گھرانے میں آنکھ کھولی، کیونکہ ابو بکر تو ڈے ون سے مسلمان ہو چکے تھے، تو حضرت عائشہ کی تربیت شروع سے ہی ایک اسلامی گھرانے میں ہوئی۔ 6 سال کی عمر میں ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پکی ہوئی، خطبہ بولتے ہیں اس کو۔ 9 سال کی عمر میں ہجرت کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی، آگے بخاری میں ہم ان کی روایت پڑھیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے اتنی چھوٹی عمر میں شادی کی ہوئی، تو سمجھ لیجئے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اللہ کے حکم سے ہوئی تھی۔ ان کی خوبیوں میں آگے میں بتاؤں گی آپ کو کہ کس طرح سے ان کا نکاح اور رشتہ ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوئی تھی، اور عربوں میں یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی کہ بڑی عمر کا مرد ہے یا چھوٹی کی عورت ہے، کچھ ہے، इसीलिए आप देखेंगे कि 13 साल मक्का के अल्लाह के नबी पर बहुत सारे इल्जाम लगे, लेकिन आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपने इतनी छोटी लड़की से शादी क्यों कर दी। ठीक है, तो बाज़ लोग इस रिवायत का इनकार कर देते हैं, शर्मिंदा होते हैं, हाय हम कैसे लोगों को मुंह दिखाएं कि हमारे नबी की शादी इतनी छोटी उम्र की औरत से हुई थी। तो याद रखिए कि अरबों के माहौल में बच्चियां जल्दी बड़ी हो जाती थी, आज का फ़र्क है दूसरे माहौल से। दूसरी बात है कि अल्लाह ताला चाहते थे कि एक ऐसी हस्ती हो कि जिसको अल्लाह के नबी के सामने ही पाला जाए। जैसे अपने बच्चों को इंसान पालता है ना, तो आप उनकी तरबियत ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। अब एक औरत जो डेढ़ उम्र में आपके निकाह में आती है, तो उसकी तरबियत तो बहुत सारी पहले ही हो चुकी होती है। आप देखते हैं सारी उम्र भी किसी आलिम के साथ लड़कियां रहती हैं, लेकिन पुरानी आते नहीं जाती। हजरत आयशा की छोटी उम्र की शादी में ये हिकमत थी कि अल्लाह के नबी के ज़ेर तरबियत रहकर, एक तो पहली बात है कि तरबियत लें, दूसरी बात है कि अल्लाह के नबी तो दुनिया से चले जाएंगे, 18 साल की उम्र की थी तो बेवा भी हो गई, और आपके बाद तकरीबन नेस सदी तक ये दीन की खिदमत करती रही। बीवी के साथ जो खसूसी ताल्लुक होता है उसकी सारी रिवायतें, एक मर्द का अपनी बीवी के साथ ताल्लुक, रहन सहन घर में, या आपकी बीवियों से मिलना था, क्योंकि ये बातें ना तो उम्मत को कोई बाहर से किसी से पता चलनी थी। तो लिहाजा ये एक अपनी जगह पे अलग मौजू है, जब वो हदीस आएगी तो वहां जितना भी मौका होगा हम उस पर बात करेंगे। रह गई बात कि हजरत आयशा की खूबियां क्या थी, असल ये बात है मेरे और आपके लिए, कौन कब पैदा हुआ किधर रहा ये तो उसकी बात उसके अंदर है। तो पहली बात यह कि हजरत आयशा को उम्मुल मोमिनीन का खिताब मिला, मोमिनों की माँ है। दूसरी बात है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा की मिसाल औरतों पर ऐसे जैसे सरीद के खाने की मिसाल बाकी खानों पर, और सरीद मैं और आप तो नहीं समझते, बस आप उसको निहारी कह लें। अरब लोग गोश्त पकाते थे फिर उसमें रोटियां तोड़ तोड़ के डालते थे, जैसे हम आटा घोलते हैं ना तो डालते थे, तो वो बड़ा लजीज और महंगा खाना था, तो आपको पसंद भी बहुत था। तो आपने कहा कि हजरत आयशा की मिसाल ऐसे ही है। फिर इनकी एक और खूबी क्या है, ये पॉइंट्स में लिखते जाएं तो तीसरी खूबी आ रही है कि मुनाफिकीन ने जब इन पर तोहमत लगाई तो इनकी शान में 18 आयतें नाजिल हो गई बरात की, सूरत नूर में हम पढ़ेंगे। फिर इनकी एक खूबी क्या थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम सब्ज रेशम में लिपटा हुआ हजरत आयशा को ख्वाब में दिखाते हैं। यानी इनका रिश्ता कैसे हुआ था, ख्वाब दिखाया गया था नबी सल्लम को कि सब्ज कपड़े के अंदर कोई छुपा हुआ है, तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि जब मैंने उठाकर चेहरा देखा तो वो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। तो गोया कि ये अल्लाह की तरफ से एक प्रपोजल था। एक इनकी और खूबी भी क्या है कि ये वाहिद कुंवारी बीवी थी अल्लाह के नबी की, बाकी जितनी भी औरतें थीं वो पहले से मैरिड थीं या बेवा थीं या मुतल्लिका थीं, डिवोर्स थीं या विडोज थीं। अगली खूबी इनकी क्या है कि नबी सल्लम का सर मुबारक वफात के वक्त हजरत आयशा की गोद में था, यानी इतनी क्लोज एसोसिएशन थी। फिर इसी तरह हजरत आयशा की एक और खूबी क्या है कि हजरत आयशा के लिहाफ में अल्लाह के नबी पर वही आती थी, यानी आप अपनी बीवी के साथ आराम फरमाते थे और उस वक़्त भी वही आ जाती थी। फिर अगली इनकी खूबी यह है कि अल्लाह के नबी की कब्र मुबारक आयशा के हुजरे में है। फिर हजरत अबू बकर की भी उधर कब्र बनी और उसके बाद हजरत उमर की भी, और वहां भी एक जगह खाली है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल जब होगा तो वो दफन होंगे। फिर इनकी एक खूबी यह कि ये नबी सल्लम की सबसे महबूब बीवी थी और इनके बाप भी आपको सबसे ज्यादा महबूब थे। आप अक्सर प्यार से इनको कहते थे या आयश, आयश, आयशा नहीं कहते थे, आयश, मोहब्बत थी इनकी। किसी ने पूछा आपको किससे प्यार है तो कहा कि सिद्दीका से, तो कहा मर्दों में किससे है तो कहा सिद्दीका के बाप सिद्दीक से, यानी सिद्दीका आयशा सिद्दीका इनका लकब है। ठीक है, तो बाप सिद्दीक थे, यानी बाप और बेटी दोनों अल्लाह के नबी के महबूब थे। फिर इसके बाद आप देखिए कि इनकी एक और खूबी यह है कि ये वो खुशकिस्मत खातून है कि 6 साल की उम्र से नबी सल्लम के कुर्ब में आ गई, इतनी जल्दी तो कुर्ब किसी से भी आपको नहीं मिला। फिर उसके बाद एक और इनकी खूबी है कि नबी सल्लम की बीमारी के जो आखिरी दिन थे उनमें आप हजरत आयशा के हुजरे में मुंतकिल हो गए थे। सारी बीवियों ने खुशी से इजाजत दे दी थी कि हमें पता है कि अल्लाह के नबी का दिल जो है हजरत आयशा के साथ लगता है, बल्कि आप फरमाया करते थे कि अल्लाह मैं जाहरी तौर पर बहुत अच्छी बांट करता हूँ, लेकिन मुझे ना पकड़ना मेरी बांट पर, मेरा दिल आयशा की तरफ झुकता है। और ये आप सब भी जानती होंगी, आपके 4-4 बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं, माशाल्लाह सबसे आपको मोहब्बत है, लेकिन एक बच्चे से बहुत ही प्यार होता है, उसके लिए दिल से उठता है। वही बात है अल कई तो अलही का मोहब्बत अमिनी, तो कहते थे अल्लाह इस पे मुझे ना पकड़, यानी इंसाफ करते थे, लेकिन दिल में मिलान था। और उसकी वजह भी है कि हजरत आयशा बहुत वेल मैनर्ड थी, सॉफ्ट स्पोकन थी, बहुत खूबसूरत भी थी, और सबसे बड़ी बात यह कि इनके मैनर्स बड़े खूबसूरत थे। फिर इसी तरह एक और इनकी ख़ास चीज़ देखी गई, और वो क्या कि जिस दिन नबी सल्लम हज़रत आयशा के घर होते तो दूसरे लोग भी उस दिन तोहफे भेजा करते थे, हदायास भेजा करते थे कि अल्लाह के नबी को उस दिन तोहफा दिया जाए जब आप आयशा के पास हैं और आप इसको इंजॉय कर सकें। एक बात जो बहुत कम लोगों को पता है, और वो क्या है कि जिस रात अल्लाह के नबी हज़रत आयशा के साथ होते थे ना, अमूमन उस रात का आखिरी हिस्सा जाकर कब्रिस्तान में जन्नतुल बकी में गुजारते थे, ये सोच के कि कहीं मैं अपनी बीवी की मोहब्बत में आखरत से गाफिल ना हो जाऊँ। इसी पे वो मरूफ रिवायत है जो आगे अपनी जगह पे कहीं आएगी 15 शाबान की, कि अल्लाह के नबी आपका साया पहचानती हुई चली गई और आपको कब्रिस्तान में देखा। तो वो सिर्फ 15 शाबान को नहीं हुआ था, वो बात ठीक है, लेकिन आप अमूमन जाते थे ताकि बीवी की मोहब्बत में मैं अल्लाह से दूर ना हो जाऊँ। फिर हज़रत आयशा की एक और खूबी है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको सलाम कहलाया करते थे और ये आगे से जवाब देती थी। एक मौके पे अल्लाह के नबी के साथ मौजूद थी कि इतने में जिब्राइल आ गए, आप पे वही आई, तो वही के बाद आपने कहा कि आयशा जिब्राइल आपको सलाम कहते हैं, तो हज़रत आयशा ने कहा कि आप भी उनको मेरा जवाब दे दीजिए। फिर एक और हज़रत आयशा की खूबी क्या है कि हज़रत आयशा का हार गुम गया था एक जंग के मौके पर, और इंतज़ार के दौरान फिर तयम्मुम की आयतें नाजिल हुईं, और उस वक्त फिर लोगों ने कहा कि सिद्दीक के घराने से तो हमें हमेशा ही खैर मिली है, यानी एक उम्मत पे आसानी हो गई ना कि जब पानी ना हो तो तुम तयम्मुम कर लिया करो, खैर ही खैर थी। फिर इसी तरह से आयशा अल्लाह के नबी के साथ दौड़ का मुकाबला भी करती हुई दिखती हैं। पहली दफ़ा जब मुकाबला किया तो हज़रत आयशा जीत गई, दुबली पतली थी और भाग गई आगे। दूसरी दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा एक और मुकाबला करेंगे, जब वो किया तो अल्लाह के नबी आगे चले गए, क्योंकि अल्लाह के नबी पीछे तो नहीं रह सकता। तो अल्लाह के नबी ने बड़े प्यार से कहा कि आयशा हाजी ही बेदिल का, ये उस दिन का बदला, यानी मैंने आज तेरा ये बदला ले लिया। इसी तरह हजरत आयशा वो बीवी हैं जिनके बारे में आता है कि इनसे अल्लाह के नबी रोजे की हालत में भी बोसा कर लिया करते थे, और हजरत आयशा इस बात की गवाही देती हैं कि अपने जज्बात पे काबू पाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी और को भी गलबा नहीं था। फिर इसी तरह सखी बहुत थी, इतनी सखावत थी कि उरवा बयान करते हैं, इनके भांजे ही थे वो भी, कहते हैं कि मुआविया ने हजरत आयशा की खिदमत में 1,00,000 दिरहम भेजे, शाम होने से पहले सब दिरहम गरीबों में बांट दिए, सारी झाड़ छोड़ के चीजें खत्म की। तो इनकी खादिमा ने कहा कि क्या था अगर 1 दिरहम का गोश्त हम खरीद लेते, आज हमारे घर गोश्त पकता, तो कहती है पहले क्यों नहीं याद करवाया, 1 रख लेते हम भी। इतनी लाउबाली, इतनी भोली थी, यानी इनको अपनी चीज की परवाह नहीं होती। इसी तरह जब इन पे तोहमत लगी थी तो लोगों ने कहा कि घर के लोगों से पूछो, वो ज्यादा अच्छी बात करते हैं। तो हजरत आयशा के बारे में इनकी जब लौंडी ब्रीरा उनका नाम था, उनसे पूछा गया कि तुमने इनको कैसा पाया, कहा मुझे तो उनमें कोई ऐप नहीं दिखा, बस एक है, क्या, आटा गूंद के रखती है और बकरी आती है और आटा खा जाती है। यानी बोली बाली जैसे शादी के शुरू के दिनों में लड़कियां करती हैं और सर रोती हैं और माँ को याद करती हैं, है फिर याद आते हैं ना, यानी भोली बहुत थी, छोटी उम्र थी और आप समझते हैं कैसी होंगी। फिर इनकी एक और खूबी क्या थी कि नबी सल्लम का आखिरी वक्त जब था तो हजरत आयशा के मुंह का लुआब, यानी आपका जो मुंह का थूक था, ये नबी सल्लम के मुंह में मिसवाक के जरिए गया, अल्लाह के नबी की आंखों से लग रहा था, हजरत आयशा समझ गई कि आप मिसवाक करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर वीकनेस आ चुकी थी, तो हजरत आयशा समझ गई, कहने लगी आप मिसवाक करना चाहते हैं का, फिर आपने इशारे से कहा कि मुझे चबा के दो, तो इन्होंने उस मिसवाक को चबाया, जब सॉफ्ट किया तो ज़ाहिर है आपके मुंह का लुआब उसमें लगा, फिर वही मिसवाक अल्लाह के नबी ने किया। आज कितने हस्बैंड वाइफ है जो एक दूसरे का ब्रश भी करें, हम तो ग्लास नहीं पकड़ते एक दूसरे का, तो बात क्या होगी, फिर मोहब्बत कहाँ से आएगी। और जरासीमों ने हमें इतना कुछ ज्यादा डरा दिया, अल्लाह से इतना नहीं डरते जितना जरासीमों से डरते हैं, अल्लाह हमें हिदायत दे। बहरहाल बहुत बड़ी फकीहा थी, 2210 हदीसें इनसे रिवायत है, यानी हजरत अबू हुरैरा सबसे ज्यादा हदीसों के नरेटर हैं, और दूसरे दर्जे पे हजरत आयशा। मुस्तनद आयशा के नाम पर एक पूरी किताब है जिसमें सिर्फ इनकी सनदें मौजूद हैं, और ये जो इनकी हदीसें थी इनमें से 174 हदीसें वो हैं जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हैं, जिसको मुत्तफिक अलैह हदीसें कहते हैं, और 54 हदीसें बुखारी में इनकी अलग से भी मौजूद हैं, और 69 हदीसें वो हैं जो सिर्फ मुस्लिम में हैं। तो आप देख सकते हैं कि इल्मी खातून थी, लोग कहते हैं कि सही बुखारी में एक रिवायत हम पढ़ेंगे आगे जाके कि अगर सारी औरतों का इल्म और उम्महातुल मोमिनीन का इल्म एक बलड़े में रखा जाए तो सिर्फ आयशा का इल्म जो है वो उसके मुकाबले में बढ़ जाता है या उनके बराबर है। तो बड़ी आला पाए की शख्सियत थी। इंतकाल इनका हुआ था 17 रमज़ान को, 57 या 58 हिजरा में, यानी 57 ईयर्स हो चुके थे अल्लाह के नबी को हिजरत करके गए हुए। यानी आप सोच सकते हैं कि तकरीबन नस सदी तक आपके बाद भी रही। मंगल की रात थी जिस दिन इनका इंतकाल हुआ, 18 साल की थी जब बेवा हुई, जन्नतुल बकी में ये दफन की गई, और कब्र में इनको उतारने के लिए इनका महरम कौन था? भांजे और भतीजे उर्वा, अब्दुल्ला और कासिम। अब्दुल्ला जो हैं वो इनकी बहन के बेटे थे, और उर्वा और कासिम जो है ये, बल्कि उर्वा भी भांजे ही थे, कासिम जो थे वो इनके भतीजे थे, भाई इनका जो मोहम्मद था उसके बेटे थे। तो बहरहाल इस तरह से ये इल्म का खजाना जो था ये जमीन में गया। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक औरत पे हमने इतनी बात की, क्योंकि ना तो ये कोई अल्लाह रहम करे कि कोई मुकाबले हुसन की औरत थी, और ना आप देख सकते हैं कि इसको दुनिया में कोई दौलत कमाने का जुनून था। आज कितने साल हो गए आयशा को दुनिया से गए हुए, आज किस चीज़ ने इनका तस्करा रखा, ये आप इस वक्त आखिरी बात है आज के सेशन की जिसको सोचना है। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम लोग तब इस हदीस के मतन पे बात करेंगे कि इसमें कितने खजाने हैं, और आप देखेंगे कि एक एक हदीस के अंदर से इतना कुछ निकलेगा कि हम सोचेंगे कि ये देखने में तो एक आम बात थी लेकिन इसमें इतना कुछ था। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमारा फहम खोल दे, हमें अमल की तौफीक दे। जिस तरह उसने हज़रत आयशा को चुना इसी तरह से वो हम सबको भी चुन ले। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।